नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में श्रोताओं, मैं हूं अतहर सईद आपके साथ, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल। राकेश, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया आपका बुलाने के लिए।
पहले नजर मुख्य समाचारों पर। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में इस समय स्पेन के कार्लोस अल्कराज गार्फिया का सामना इटली के जैनिक सिनर से हो रहा है। सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह दिया। भारत और कुवैत के बीच फुटबॉल मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। अमन सहरावत ने बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज में रजत पदक हासिल किया। और सिफ्त कौर समारा ने आईएसएसएफ विश्व कप राइफल पिस्टल प्रतियोगिता में महिलाओं की 50 मीटर राइफल फ्री पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। शुरुआत फ्रेंच ओपन टेनिस के साथ। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में इस समय स्पेन के कार्लोस अल्कराज गार्फिया का सामना इटली के जैनिक सिनर से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों खिलाड़ी एक एक सेट की बराबरी पर हैं। अंतिम समाचार मिलने तक तीसरे सेट में सिनर 4-2 से आगे हैं। आज ही दूसरा सेमीफाइनल नॉर्वे के कैस्पर रेड और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव के बीच खेला जाएगा। कल महिला सिंगल्स फाइनल में पोलैंड के इगा स्वीटेक का मुकाबला इटली की जैस्मीन पाओनी से होगा। इस बीच भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। कल पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में इटली के सिमोन बोलेली और आंद्रे वाबासोरे ने उन्हें 5-7, 6-2, 6-2, 6-6 से मात दी। राकेश, बड़ा रोमांचक मुकाबला इस समय चल रहा है जहां तक फ्रेंच ओपन टेनिस की बात है, उसके फाइनल की बात है, क्योंकि ये लाल बजरी पर होता है। फ्रेंच ओपन में हमेशा निगाहें सिंगल्स मुकाबले पर होती है। अब वैसे तो किसी भी टूर्नामेंट में सिंगल्स मुकाबला सबसे ज्यादा आकर्षण लेता है, लेकिन इसका आकर्षण और बढ़ जाता है राकेश जब टॉप सीडेड खिलाड़ी आमने सामने हो, और उनमें भी रोमांच और ज्यादा बढ़ जाता है जब मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर हो। जैसा कि हमने अभी अपने समाचारों में बताया कि इस समय सिनर तीसरे सेट में 4-2 से आगे हैं। इससे पहले दोनों खिलाड़ियों ने एक एक सेट अपने नाम किया, तो ऐसे में आपकी प्रारंभिक टिप्पणी क्या होगी?
देखिए, ये दोनों ही खिलाड़ी इस तरीके के हैं कि इनमें अलग तरह की खूबियां हैं। दोनों में बहुत अच्छा स्टेमिना है, मैराथन मैच खेलने की इनके अंदर क्षमताएं हैं। कार्लोस अल्कराज को देखें तो वो एक फोरआर्म की इंजरी के साथ इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, तो सिनर को देखें तो वो थोड़ी अपनी हिप इंजरी से परेशान है। और दोनों का खेल, एक का फोरहैंड शॉट जो है वो बड़े शानदार होते हैं, तो एक के बैकहैंड शॉट बड़े शानदार होते हैं, तो बहुत जबरदस्त ये जबरदस्त एथलीट हैं ये टेनिस के। और ये देखिए कि कितना आकर्षण इस फाइनल मैच के सेमीफाइनल मैच का बना हुआ है, जबकि के टॉप थ्री जो होते हैं उसमें राफेल नडाल को देखें वो नहीं है, जोकोविच नहीं है, रोजर फेडरर नहीं है। और ये ऐसा मतलब बहुत कम हुआ होगा, शायद 2 या 3 बार जब ये खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में से आगे ना दिखाई दे रहे हो, क्वार्टर फाइनल से पहले ही इनका सफर समाप्त हो गया।
अच्छा राकेश, अब तक के सफर के बारे में अगर आपकी बात रोक करके मैं ये जानने की कोशिश करूं कि अभी से आपका गैस वर्क क्या होगा, अल्कराज या सिनर?
देखिए, मैं सिनर की तरफ जाऊंगा क्योंकि जैनिक सिनर बहुत चढ़ते हुए युवा खिलाड़ी हैं, और इस टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन कैसा भी रहे, जो सोमवार को रैंकिंग जारी होगी उसमें वो वर्ल्ड के नंबर 1 बनेंगे। और कार्लोस अल्कराज जो है वो कई साल पहले वर्ल्ड नंबर 1 बने थे, जबकि सिनर का उभार हो रहा था टेनिस के अंदर, और इस साल वो 3 टूर्नामेंट जीत चुके हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन जो साल का पहला ग्रैंड स्लैम है वो भी सिनर ने जीता है। बहुत जबरदस्त एथलेटिक खिलाड़ी हैं, तो मुझे लगता है कि इनके जीतने की संभावना इस सेमीफाइनल को ज्यादा, और फिर फाइनल में भी इनका पलड़ा भारी रहेगा।
हालांकि ऊर्जा से भरपूर तो अल्कराज भी हैं, उनका जो उदय हुआ है 1-1.5 साल के अंदर बिल्कुल धूमकेतु की तरह हुआ है, और कई सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट उन्होंने अपने नाम किए हैं।
बिल्कुल, उनके नाम भी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, और परफॉर्मेंस अच्छा किया, वर्ल्ड के नंबर 1 रहे हैं, लेकिन वो रहे हैं, फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 है। और जो सिनर जो है वो अब पहली बार वर्ल्ड नंबर 1 बनने जा रहे हैं, तो जब आपके सामने वर्ल्ड नंबर 1 का ताज भी होता है और टूर्नामेंट का ताज भी आपके सामने है, तो दोनों चीजें आप सोमवार को आपके हाथ हो, आपके साथ हो, ये कोई भी खिलाड़ी चाहेगा, और उसके लिए वो जी जान लगा देगा। लेकिन कहीं उनकी जो इंजरी है, हिप इंजरी है, वो कहीं फाइनल तक उनको बढ़ ना जाए, ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय है।
अच्छा, एक चीज और है, आज दूसरा सेमीफाइनल भी चल रहा है, और दोनों ही सेमीफाइनल रोमांचक होने का पूरा पूरा यहां पर अवसर है, क्योंकि पहला सेमीफाइनल हम देख ही रहे हैं कि बहुत ही रोमांचक दौर में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले के लिए आपके क्या विचार हैं, ज़वेरेव या कैस्पर रेड?
देखिए, अब ये कहना इसमें बड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी ये फाइनल सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है
जी,
है ना। तो सेमीफाइनल मुकाबला जो होता है वो किसी भी खिलाड़ी के लिए एकदम अलग हो जाता है और सारा अट्रैक्शन जो है ना वो इस पहले सेमीफाइनल के ऊपर आ गया है, अल्कराज और सिनर के ऊपर सारा। तो इनकी तरफ उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका फायदा भी उन खिलाड़ियों को मिलता है। लेकिन जो भी खिलाड़ी, इन दोनों खिलाड़ियों के निगाहें उनकी ये होंगी कि भाई फाइनल में किसके साथ मुकाबला होता है। कई बार हमने देखा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स के अंदर सेमीफाइनल में बहुत जबरदस्त मुकाबले हो जाते हैं
जी,
और वो फाइनल तो यार थोड़ा सा फीका पड़ता है जो ये सेमीफाइनल मुकाबले हैं, क्योंकि इसमें आपको चार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं और उसमें दो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होंगे।
बिल्कुल।
तो मुझे लगता है कि सेमीफाइनल की तरफ लोगों की निगाहें ज्यादा रहती हैं कि भाई इसमें जबरदस्त टेनिस खेलने का मौका मिलता है और जो खिलाड़ी लगातार देखिए जीतते आ रहे हैं, सिनर का देखें तो एक सेट उन्होंने गंवाया अभी तक, ये बड़ी बात है। और आप लगातार जीतते हुए आ रहे हैं तो सेमीफाइनल में शेष प्रदर्शन करना है, और सेमीफाइनल बहुत कड़ा हो जाए तो उसके बाद फाइनल के लिए स्टैमिना बचा के रखना, अपनी रणनीति को एकदम से चेंज करना, वो सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है।
पहले तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाए, कुछ ही देर के बाद हो जाए कि अल्कराज या फिर सिनर या फिर दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में ज़वेरेव या फिर उनके जो सामने होंगे कास्परोव, इन दोनों में से कौन सी जोड़ी में से कौन से मैचेस में से दो खिलाड़ी फाइनल मैच खेलते हैं। महिलाओं का जिक्र कर लेते हैं राकेश, कल दुनिया की नंबर एक पोलैंड की इगा स्वीटेक और 12वीं वरीयता प्राप्त इटली की जैस्मिन पाओलोनी के बीच मुकाबला होगा, और ये मैच कितना रोमांचक होने की उम्मीद है ये आप मुझे बता सकते हैं? क्या कल जैस्मिन हमें चौंका सकती है?
नहीं देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि फाइनल मुकाबला एकदम अलग मुकाबला होता है, लेकिन जो इगा स्वीटेक हैं इस समय वो जबरदस्त फॉर्म में चल रही हैं, और उनके सामने जस्टिन हेनिन के बाद लगातार तीन बार फ्रेंच ओपन जीतने वाली महिला खिलाड़ी बनने का जो रिकॉर्ड है जो जस्टिन हेनिन ने 2007 से 2009 के बीच में बनाया था वो उनके सामने है, और शीर्ष रैंकिंग की खिलाड़ी हैं वो, और पेरिस में 5 साल में चौथी बार फ्रेंच ओपन का खिताब हासिल करने की तरफ बढ़ रही है।
तो एक तरफ तो चौथी खिताब की तलाश में इगा स्वीटेक हैं, तो दूसरी तरफ पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने वाली जो है पाओलोनी है, पड़ला किसका भारी होने की उम्मीद है, अनुभव या फिर ऊर्जा?
देखिए अनुभव तो हावी रहता ही, लेकिन कई बार जो ऊर्जा होती है नए खिलाड़ी की जो पहली बार फाइनल में आता है और उसके खेल को आपने ज्यादा देखा नहीं होता, उसके साथ आप ज्यादा खेले नहीं होते, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा अनुभवी खिलाड़ी जो है वो फाइनल मुकाबले में फायदा ले जाते हैं। लेकिन हमने तमाम ग्रैंड स्लैम देखे इतने सालों में कि अनेक युवा खिलाड़ी भी जो आते हैं जो पहली बार आते हैं और उसमें चैंपियन बनकर जाते हैं,
उलटफेर का,
बिल्कुल उलटफेर का मादा भी खिलाड़ी रखते हैं।
भारत के सुमित नागल ही लाइनर ब्रोनर निकर कप चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। जर्मनी में खेले गए क्वार्टर फाइनल में आज सुमित ने रूस के इवान गाखोव को सीधे सेटों में 6-1, 7-6 से पराजित किया। और अब फुटबॉल की, भारतीय फुटबॉल के दिग्गज सुनील छेत्री ने कल कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर मुकाबले के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह दिया। इस पर और जानकारी हमें दे रहे हैं सकलैन।
कल कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में भारत के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर को अलविदा कहा। इस दौरान उन्हें उपहार में ट्रॉफी और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। अपने आखिरी मैच के बाद छेत्री भावुक हो गए। उन्होंने मैच के बाद पूरे स्टेडियम का लैप ऑफ ऑनर भी लिया और दर्शकों को धन्यवाद दिया। भारतीय टीम ने भी सुनील छेत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सुनील छेत्री के अंतिम मैच में भारत ने कुवैत के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ खेला। छेत्री भारत के फुटबॉल इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया और उनका करियर लगभग 2 दशकों तक चला। उन्होंने राष्ट्रीय टीम के लिए 151 मैच खेले और 94 गोल किए। उनके नाम भारत के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने और सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड है। 11 जून को भारत जब कतर के खिलाफ होने वाले फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर मैच खेलेगा, तब टीम इंडिया पहली बार बिना सुनील छेत्री के मैदान पर उतरेगी। सकलैन अख्तर, स्पोर्ट्स कैन।
एक शानदार खिलाड़ी की शानदार करियर का अंत, क्या कहेंगे राकेश, भारतीय फुटबॉल की क्षति या फिर एक ऐसा प्रेरणा स्रोत जो हमेशा भारतीय खिलाड़ियों को ऊर्जा देता रहेगा, प्रेरणा देता रहेगा?
देखिए प्रेरणादायक तो वो रहेंगे, उन्होंने दिखाया सुनील छेत्री या उससे पहले भाईचुंग भूटिया, ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने दिखाया कि वे हिंदुस्तान के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर सकते हैं, उनके क्लबों के लिए खेल सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में अपने खेल की छाप छोड़ सकते हैं। और सुनील छेत्री तो देखिये दिल्ली की शान थे, दिल्ली के खिलाड़ी वो रहे हैं, दिल्ली के स्कूल में वो पढ़े और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए। मुझे वो समय याद है कि जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां के हॉस्टल में खाना दोपहर का देर से मिलता था और इधर दिल्ली फुटबॉल के जो लीग मैच है वो शुरू हो रहे होते थे, तो उनसे फिर क्लब वाले कहते थे भाई तू खाने के पैसे हमसे ले ले, लेकिन आ जल्दी जाया कर,
क्या बात,
मैच में लेट मत किया कर, क्योंकि उनकी दुकदुकी लगी रहती है। शुरू से ही बहुत प्रतिभाशाली टैलेंटेड खिलाड़ी थे, लेकिन इतना आगे तक जाएंगे, इतना नाम कमाएंगे, भारत के लिए इतना गौरव अर्जित करेंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था कि आज दुनिया के जो चार शीर्ष गोल करने वाले खिलाड़ी हैं उनका नाम शुमार है।
बिल्कुल,
तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखिए, कहते हैं ना, किसी ने कहा कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन नहीं मिलती, कभी आसमान नहीं मिलता।
राकेश
94 गोल कर पाए, अगर वो 100 गोल कर लेते अंतर्राष्ट्रीय तो मुझे लगता है एक अच्छी उपलब्धि उनके नाम रहती है।
अभी भी कह सकते हैं कि तीसरे नंबर पर हैं, जहां तक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने की जो क्षमता है, 94 गोल के साथ वो तीसरे नंबर पर हैं। सुनील छेत्री लोकप्रियता, उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है राकेश, कि कल के मैच में 60,000 के आसपास जो हैं दर्शक उन्हें अलविदा कहने के लिए उस फुटबॉल मैच को देखने के लिए आए जो कि भारत और कुवैत के बीच खेला गया।
पूरे भारत ने उनको अपना खिलाड़ी मान लिया। मैंने बताया ना, वो दिल्ली के खिलाड़ी थे और बेंगलोर एफसी क्लब उनके लिए शुरू किया गया, और बेंगलोर में लोग जो है सैकड़ों लोग उनके नाम की जर्सी पहनकर मैच देखने आते थे, और बेंगलोर से ऐसे लोग फ्लाइट पकड़ के कलकत्ता पहुंचे जिनके पास टिकट भी नहीं था, इस उम्मीद में कि भाई वहीं जाके हम कुछ अरेंजमेंट कर लेंगे। टिकटें ब्लैक में बिकी हैं इस मैच की, तो आखिरी मैच में उनको विदाई देना, लेकिन आखिरी मैच में गोल नहीं हुआ, वो गोल नहीं कर पाए, ये एक बड़ी वो रही। अगर वो गोल करते, भारत इस मैच में अगर जीतता तो मुझे लगता है कि उनकी विदाई बहुत शानदार होती, वो एक कहीं ना कहीं एक रह जाता है लोगों के दिल में, तो वो टीस रह गई है।
अच्छा राकेश, मेरा तो मानना यह है कि सुनील छेत्री के संन्यास के साथ ही भारतीय फुटबॉल का एक युग समाप्त हो गया है।
बिल्कुल, देखिए एक युग होता है, जैसे हमने भाईचुंग भूटिया का जमाना देखा है। मैं वो देश का पहला पत्रकार हूंगा जिसने भाईचुंग भूटिया का पहली बार इंटरव्यू किया, दिल्ली में इलिमका सॉकर टूर्नामेंट होता था, उसमें बेस्ट प्लेयर बने थे 92 के आसपास, तब मैंने उनका इंटरव्यू किया था, और उन्होंने कहा था कि मैं तो मैराडोना से भी गेंद छीनने में नहीं हिचकूंगा। तो बहुत जबरदस्त वो खिलाड़ी थे, वैसे ही सुनील छेत्री थे। एक युग भाईचुंग भूटिया करा, फिर ये सुनील छेत्री करा, और अब देखना होगा कि आगे इनकी परंपरा को कौन खिलाड़ी आगे बढ़ाता है,
ये बड़ा सवाल है।
बिल्कुल,
बढ़ते हैं आगे। भारत और कुवैत के बीच कल कोलकाता के साल्ट लेक में फुटबॉल मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। ये लोकप्रिय भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री का भारत के लिए अंतिम मैच था। इस मुकाबले के ड्रॉ होने से भारत के फीफा विश्व कप के तीसरे दौर के क्वालिफायर में पहुंचने की आशा धूमिल हो गई है। इस पर चर्चा करने से पहले हम बल्कि अब चर्चा चूंकि समय अनुमति नहीं दे रहा है, अगली स्टोरी की तरफ हम बढ़ेंगे जो कि क्रिकेट से है। अमरीका ने T20 विश्व कप का बड़ा उलटफेर कर दिया है। ग्रुप ए के मैच में अमरीका ने 2009 के चैंपियन पाकिस्तान को सुपर ओवर में हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 159 रन बनाए थे। जवाब में अमरीका की टीम ने भी निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 159 रन बनाए। इसके बाद मैच सुपर ओवर में जा पहुंचा। अमरीका ने सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 रन बनाए। इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 6 गेंद पर मात्र 13 रन ही बना सकी और मैच 5 रन से हार गई। बहुत ही संक्षिप्त टिप्पणी आपकी।
देखिए, मुझे लगता है कि एक मेजबान होने के नाते जिस तरह की तैयारी और उलटफेर किया है अमेरिका ने, तो उससे लग रहा है कि अच्छी तैयारी के साथ है। किसी भी टूर्नामेंट की मेजबानी कोई भी देश तब लेता है जब उनकी भी कुछ अच्छी तैयारी हो, और यूएसए ने इस चीज को दिखाया है कि भाई उनकी तैयारी तो अच्छी है, न केवल मेजबानी में बेहतरीन करना चाहते हैं वो, बल्कि अपने प्रदर्शन से भी सबको चौंका रहे, और इस समय पूरी चर्चा उनकी है और चारों तरफ वाहवाही उनकी हो रही है।
भारत का अगला मुकाबला पाकिस्तान से 9 जून को खेला जाएगा, वहीं 12 जून को भारत और अमेरिका आमने सामने होंगे। कुश्ती की बात करें तो भारत के अमन सहरावत ने कल शाम हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में रजत पदक जीता। फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में अमन को जापान के री हिगुची से तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर 1-11 से हार का सामना करना पड़ा। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज विश्व में 14वीं वरीयता प्राप्त भारत के लक्ष्य सेन को 5वीं वरीयता प्राप्त डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसन से हार का सामना करना पड़ा। और श्रोताओ, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। राकेश, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
शुक्रिया आपका।
और श्रोताओ, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।